स्वागत है आपका दिन भर में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 19 अक्टूबर और दिन गुरुवार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ अदालत में आरोप तय।
ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है जिसके अंदर फैसला पहले आ गया और ट्रायल जो है वो बाद में चल रहा है। और मैंने अभी कल पढ़ा है, मैंने सुना भी है कि सबूत लेने के लिए नैब की टीम जो है वो इंग्लैंड गई है।
अफगानिस्तान में सैनिक छावनी पर तालिबान का हमला, 43 सैनिकों की मौत। जानिए कैसे दीपावली मनाते हैं बीकानेर के मुसलमान।
कत्ले रावण के सब आसार अब नुमाया हो गए, देखने को जाहिरा हनुमान जी की चल गई, देखने को जाहिरा हनुमान जी।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम शरीफ और दामाद मोहम्मद सफदर पर आरोप तय कर दिए हैं। इन तीनों पर लंदन में फ्लैट्स के एक मामले में आरोप तय किए गए हैं। नवाज शरीफ को जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना राजनीतिक सिद्धांत दिया है जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज होने में मदद करेगा। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया है कि दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रपति के विचार शी जिनपिंग विचारधारा के नाम से जाने जाएंगे। स्पेन सरकार ने कहा है कि वह कैटलोनिया की स्वायत्त ताकतों को कम करने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू करेगी। स्पेन संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल ने सीनेट द्वारा औपचारिक बदलाव की तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि स्पेन सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि कैटलोनिया के शीर्ष नेता कार्लस पुज्जमोंट ने कहा था कि स्पेन सरकार द्वारा इस संकट पर बात न करने पर उनकी स्थानीय संसद स्वतंत्रता की घोषणा कर देगी। सटीक और स्पष्ट शब्दों में जवाब न देने के कारण स्पेन की केंद्रीय सरकार समझती है कि उनसे सफाई नहीं मांगी जाएगी, जिस वजह से सरकार संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत कैटलोनिया में कानून बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। ये थे स्पेन सरकार के प्रवक्ता इनिगो मेंदेस दे विगो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान के सैन्य दल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि वह अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को गति देगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि ऐसी प्रतिक्रिया उसने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मनी भरे नजरिए के कारण दी है। ट्रंप ने हाल में ईरान के शासन को कट्टर बताते हुए कहा था कि वह आतंकवाद को प्रायोजित करता है और उन्होंने मिसाइल कार्यक्रम रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन के सम्मेलन के लिए उसके सभी नेता वहां पहुंच चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वह स्पेन में कैटलोनिया पर जारी विवाद को लेकर स्पेन के साथ हैं। साथ ही जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि वह यूरोप में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को काबू करने के लिए तुर्की को दी जाने वाली सालाना रकम में बदलाव की कोशिश करेंगी। ये यूरोपियन परिषद एकता के संदेश के तौर पर जानी जाएगी, एकता हमारे साथी सदस्यों के बीच में जो अभी संकट का सामना कर रहे हैं। स्पेन के लिए एकता, साथ ही ब्रेक्जिट की चर्चा को लेकर एक मजबूत एकता दिखाएंगे। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। केन्या के विपक्षी नेता राइला ओडिंगा ने देश के चुनाव आयोग के प्रमुख से मुलाकात की है। कल चुनाव आयोग प्रमुख वफुला चेबुकाती ने कहा था कि आयोग के ढांचे के भीतर महत्वपूर्ण बदलाव किए बिना राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा विश्वसनीय चुनाव कराने की गारंटी देना मुश्किल होगा। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने अनियमितता के आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति चुनाव निरस्त कर दिए थे। सीरिया में तथाकथित इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों का सामना कर रहे अमरीका समर्थित सुरक्षा बलों ने कहा है कि वे पकड़े गए कुछ विदेशी लड़ाकों पर मामला चलाने का विचार कर रहे हैं। सीरिया के रक्का शहर पर कब्जा करने वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने कहा है कि वे अभी उन लड़ाकों की संख्या की जांच कर रहे हैं जो दूसरे देशों से आए हैं और उनके सभी मामले स्थानीय अदालतों में चलेंगे। इराकी प्रशासन ने कुर्दिश क्षेत्र के उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। किरकुक शहर में सरकारी सुरक्षा बलों के कब्जे की उपराष्ट्रपति कोसरत रसूल अली ने निंदा की थी। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 19 तारीख और दिन गुरुवार। कार्यक्रम की शुरुआत पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद रिटायर्ड कैप्टन सफदर पर आरोप तय कर दिए हैं। इन तीनों पर लंदन में फ्लैट्स के एक मामले में आरोप तय किए गए हैं। 67 साल के नवाज शरीफ को इसी साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अज्ञात स्रोतों से अघोषित आय के मामले में प्रधानमंत्री के पद से के लिए अयोग्य ठहरा दिया था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। आज इस्लामाबाद में अदालत में जब सब कुछ हो रहा था, उस वक्त बीबीसी उर्दू के संवाददाता शहजाद मलिक भी वहाँ मौजूद थे। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की और सबसे पहले यही पूछा कि अदालत के आज के इस फैसले के क्या मायने हैं।
जी, इसके मायने अब ये हैं कि इन पे बाकायदा तौर पे जो केसेस थे, जो के अकाउंटेबिलिटी जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत बनाए गए थे, उसकी जो कार्रवाई है, कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो गई है। और अब चूंकि उन पे इंडाइटमेंट हो गई है, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, तो अब ये मामला जो है वो आगे चलेगा। तो उन्होंने चूंकि नवाज शरीफ तो अदालत में मौजूद नहीं थे, जबकि मरियम नवाज और उनके जो पति हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर, वो अदालत में मौजूद थे, तो उन्होंने जो भी इनके जो चार्जशीट थी उन पे जो एलिगेशन थे वो उन्होंने इससे इनकार किया कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो जब ये प्रोसीडिंग काफ़ी देर चली तो उसके बाद उन्होंने जो नैब की जो प्रोसीडिंग है उन पे भी एतराज़ात उठाए हैं, और उन्होंने तक ये भी कहा है कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने गॉड फादर और सिसिलियन माफिया भी करार दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अदालत में पेश हो रहे हैं। लेकिन अदालत का जो नैब का जो तरीकाकार है वो ठीक नहीं है।
टाइम बचाएं, मुल्क का भी, कौम का भी, अपना भी, हमारा भी, और अगर सजा सुनानी है तो सुना दें, लेकिन कानून और आईन का तमाशा ना बनाएं और इंसाफ का तमाशा ना बनाएं, अपने आप को कॉन्ट्रोवर्शियल ना करें, एक दफा फैसला सुना दें, बात खत्म।
शहजाद मलिक साहब, ये जो उन्होंने उनके जो अल्फाज हैं, जिन लफ्ज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो काफ़ी सख्त हैं, तो आखिर क्या शिकायत है उनको नैब के काम करने के तौर तरीके से?
जो अकाउंटेबिलिटी नैब जो है उसका एक तरीक़ेकार ये है, जो प्रोसीजर इनिशिएट होता है वो ये है कि पहले किसी केस की इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद कहीं जाके वो रेफरेंस जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाता है। लेकिन चूंकि ये मामला जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ही ये कोई मामला जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आया है, तो इस पर उन्होंने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है, अपनी अप्रिहेंशन जाहिर की हैं कि जो तरीक़ेकार एक कानून में तय है उसको ये फॉलो नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ जो आम लोगों के साथ जो जस्टिस का सलूक है वो नहीं हो रहा, और उन्होंने इसको ये भी कहा कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस भी है।
ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है जिसके अंदर फैसला पहले आ गया और ट्रायल जो है वो बाद में चल रहा है। और मैंने अभी कल पढ़ा है, मैंने सुना भी है कि सबूत लेने के लिए नैब की टीम जो है वो इंग्लैंड गई है, तो फिर मुझे ये बताया जाए कि जो GIT थी उनके वो जो इतने बड़े बड़े डब्बे दिखा रहे थे, संदूक दिखा रहे थे, एविडेंस उसके ऊपर ऐसे पेस्ट हुआ हुआ था, स्टिकर्स लगे हुए थे, इतने बड़े बड़े एविडेंस लिखा हुआ था, तो वो एविडेंस किधर गया?
अब सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और नवाज शरीफ और पूरी शरीफ फैमिली के लिए ये कितना बड़ा धचका है?
देखिए जी, जो लीगल लकूनाज हैं इसमें वो तो अपनी जगह, चूंकि अभी जो इन पे इंडाइटमेंट हुई है, फर्द जुर्म आयद हुई है, अब इसके बाद आइंदा की जो प्रोसीडिंग है वो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन के जो गवाहान हैं उनको बुलाया जाएगा और सारा जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट की जाएगी और फिर अदालत किसी नतीजे पे पहुंचेगी। लेकिन इसके साथ साथ इसके जो 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 केस है इसको जो पाकिस्तान में जो जो दीगर जो सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इसको बड़ा एक्सप्लॉयट कर रही हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ, और वो एक बाकायदा तौर पर, चूँकि ये एक अगला साल जो है पाकिस्तान में इलेक्शन का साल है, तो वो कोशिश यही कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ, जिनके जो चूंकि PMLN का ये दावा क्लेम ये है कि वो अभी भी पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, तो उसके ग्राफ को नीचे गिराने के लिए जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इन मुकदमात को बहुत ज़्यादा بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہیں اور کوشش یہی کر رہی ہیں کہ انتخابات سے پہلے پہلے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں جو اگلے سال مارچ میں ہیں اس سے پہلے پہلے اس مقدمے کا فیصلہ آ جائے, اور اگر یہ فیصلہ شریف برادران اور پی ایم ایل این کے خلاف آیا تو یقینی طور پر اگلے جو جنرل الیکشنز ہوں گے سن 2018 میں اس میں یہ پی ایم ایل این کو جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا.
تو یہ تھے اسلام آباد سے بی بی سی سنواداتا شہزاد ملک. اور اب چلتے ہیں پاکستان کے ہی پڑوسی دیش افغانستان. افغانستان کے صوبہ قندھار میں ایک فوجی چھاونی پر ہوئے حملے میں 43 جوانوں کی موت ہو گئی ہے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری لے لی ہے. خبروں میں کہا گیا ہے کہ پچھلے تو وسفوٹوں سے بھری کئی ٹرکوں نے چھاونی کے پرویش دوار کو ٹکر ماری, جس کے بعد بندوق دھاری چھاونی میں کود پڑے. حملے میں 9 طالبان حملہوروں کی بھی موت ہو گئی ہے. سنیے کابل سے بی بی سی سنواداتا سید انور کی رپورٹ.
افغانستان کے دکن پوروی پرانت پکتیا میں صوبائی پولیس ہیڈ کوارٹر اور پولیس ٹریننگ سینٹر پر بڑے حملے کے 2 دن بعد طالبان نے افغانستان کے دکن پرانت قندھار میں ایک آرمی بیس کو حملے کا نشانہ بنایا ہے. افغانستان کے رکشا منترالے کے اسپوکس پرسن جنرل دولت وزیر نے کہا کہ اس حملے میں 43 افغان فوجی مارے گئے ہیں.
متاسفانہ ساعت 2:50 دشمن مردم افغانستان بالا ایک کمپی کے
بدقسمتی سے افغانستان کے عوام کے دشمنوں نے رات کے 2 بجے صوبہ قندھار کے ضلع میوند میں ایک آرمی بیس پر حملہ کیا ہے. بدقسمتی سے اس حملے میں ہمارے 43 فوجی اہلکار شہید ہوئے ہیں, 9 دیگر زخمی ہو چکے ہیں اور 6 فوجی اہلکار ابھی تک لاپتہ ہیں. اس فوجی بیس میں 2 اہلکار زندہ ہیں اور دشمن کے 10 افراد بھی مارے گئے ہیں. افغان رکشا منترالے کے اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ 2 خودکش حملہ آور ہموی نامی فوجی بکتر بند گاڑیوں پر سوار تھے اور اس فوجی بیس کو حملے کا نشانہ بنایا. رکشا منترالے کے اسپوکس پرسن جنرل وزیری نے کہا کہ اس حملے کے بارے میں تحقیقات جاری ہے.
وہ تمام وسائل و وسائطی کے درو کام بدن ہمیشہ تخریب شدن, یعنی ہی چیزی تورنس کی وجہ سے
اس فوجی بیس میں موجود تمام فوجی ساز و سامان اور گاڑیاں اور دیگر وسائل تباہ ہو چکے ہیں. کوئی بھی چیز دشمن کے ہاتھ نہیں لگا ہے. کور کمانڈر اب اس بیس میں موجود ہے اور تحقیقات جاری ہے, جس کی تفصیل بعد میں میڈیا کے ساتھ شریک کیا جائے گا. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں 60 افراد مارے گئے ہیں. افغان فوجی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کو جنگ کے میدانوں میں شکست کا سامنا ہوا ہے, اسی لیے وہ اب خودکش حملوں کی طرف رخ کر چکے ہیں. سعید انور, بی بی سی, کابل.
آپ سن رہے ہیں بی بی سی ہندی ریڈیو کا کاریکرم دن بھر, ریڈیو کے ساتھ ساتھ آن لائن اور فیس بک پر بھی. میں ہوں اقبال احمد, اور اب بھارت سے جڑی کچھ خبریں. اتر پردیش سرکار ایودھیا میں سریو تٹ پر بھگوان رام کی 100 میٹر اونچی پرتیما استھاپت کرنے کی تیاری کر رہی ہے, لیکن ایودھیا کے سنت اس کے ورودھ میں آ گئے ہیں. سنتوں کا کہنا ہے کہ پرتیما کی اونچائی کا سرکار ریکارڈ تو بنا سکتی ہے, لیکن نہ تو یہ شاستر سمت ہوگا اور نہ ہی اس سے پرتیما کا سمان ہو سکے گا. کیا کہنا ہے سنتوں کا, بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سمیر آتمج مشر.
ایودھیا میں بھویہ دیپاولی منانے کی گھوشنا کے دوران ہی راجیہ سرکار نے سریو تٹ پر بھگوان رام کی وشالکائے پرتیما استھاپت کرنے کی بھی کلپنا کی اور اسے مورت روپ دینے کے راستے تلاشنے لگی. راجیہ سرکار کا کہنا تھا کہ یدی نیشنل گرین ٹریبیونل یعنی NGT اس کی اجازت دے گا تو سریو تٹ پر بھگوان رام کی دنیا کی سب سے اونچی مورت استھاپت کی جائے گی. NGT کے پاس انومتی کے لیے بھی سرکار نے آویدن نہیں کیا ہے, لیکن اس سے پہلے ایودھیا کے سنتوں نے ایسی مورتی کے نرماڑ پر اعتراض جتایا ہے. بی بی سی سے بات چیت میں رام جنم بھومی نیاس کے مہنت آچاریہ ستیندر داس کہتے ہیں کہ بھگوان رام کی پرتیما کھلے میں نہیں بلکہ مندر میں استھاپت کی جاتی ہے.
ہمارے بھگوان رام ایک مریادا پروشوتم کے روپ میں جانے جاتے ہیں. ان کی جتنے بھی مندر ہے وہ کہیں پر ان کی پرتیما باہر آپ نہیں دکھائی دے گی کھلی ہوئی جگہ میں, کیونکہ ایک مریادا ہوتی ہے, ان کی پوجا ارچنا کی ایک ویوستھا ہوتی ہے. यदि प्रदर्शनी के रूप में कर रहे हैं तो ये मर्यादा के प्रतिकूल है, कोई भी राम भक्त इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए यहाँ के संतों ने इसका विरोध किया है, इसलिए ये संभव नहीं है कि वो इस ऐसी मूर्ति बना करके वो मैदान में छोड़ दे।
महंत सत्येंद्र दास जैसी राय अयोध्या के दूसरे साधु संतों की भी है। दिगंबर अखाड़े के महंत आचार्य सुरेश दास भी प्रतिमा की स्थापना को शास्त्र सम्मत नहीं मानते। महंत सत्येंद्र दास कहते हैं कि इसके पीछे सरकार की सोच तो अच्छी है, लेकिन इस बारे में उसे साधु संतों की राय भी लेनी चाहिए।
अभी कोई पक्का निर्णय नहीं है, इसके बारे में हम लोग स्वयं भी साधु समाज महाराज से चर्चा करेंगे। उसमें समस्या है ना, जब भगवान के मूर्ति लगाई जाएगी तो प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसे हनुमान जी को कहीं खड़ा कर दिया जाए, वो जमीन के देवता हैं, शंकर जी को कहीं भी खड़ा कर दिया जाए ठीक है, लेकिन भगवान श्री राम पुरुषोत्तम हैं, इसलिए उनके लिए विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। उनकी जब मूर्ति बनेगी तो मंदिर होना जरूरी है, राजभोग लगना भी जरूरी है, इसलिए अभी इस पर चर्चा होगी महाराज जी से।
अयोध्या में ही रहने वाले एक अन्य संत और निर्वाणी अखाड़ा के महंत आचार्य धर्मदास भी भगवान राम की खुले में प्रतिमा की स्थापना के विरोध में है। उनका कहना है कि प्रतिमा की स्थापना की बात करके सरकार राम मंदिर के निर्माण के अपने वादे से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। साधु संतों को इस बात से भी हैरानी है कि सरकार मूर्ति निर्माण के बारे में इतना बड़ा फैसला लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन अयोध्या के साधु संतों से इस संबंध में उसने सलाह लेना भी उचित नहीं समझा। महंत सुरेश दास कहते हैं कि वो और कुछ अन्य साधु संत इस बारे में खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। वहीं राम जन्मभूमि के महंत आचार्य सत्येंद्र दास सरकार की सोच के पीछे राजनीति मानते हैं।
उद्देश्य जो कुछ भी हो, मैं समझता हूँ इसमें ज्यादातर यही है कि यह प्रतिमा जो है बना करके और लोगों को आकर्षण करे, पार्टी का लाभ हो। तो एक जगह जो छाया है, जहाँ पर भले उटान पट्टी का है, उसको जब देख करके दुखी हो रहे हैं, तो भगवान राम की इतनी बड़ी प्रतिमा और मैदान में पड़ी होगी, उसको देख करके भी भक्तगण दुखी होंगे।
बहरहाल सरकार इस मूर्ति को लेकर काफी उत्साहित है और उसका मानना है कि इसमें NGT ही आपत्ति कर सकता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि संतों के विरोध के बाद ये तय है कि NGT इसकी अनुमति भले ही दे दे, लेकिन संतों की अनुमति मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनकी आपत्ति की वजह शास्त्रों के मुताबिक है और राज्य की BJP सरकार इसकी अनदेखी शायद ही कर सके। समीर आत्मज मिश्र, BBC अयोध्या।
और अब दिल्ली की बात। दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित कहती हैं कि वो मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार से काफ़ी मायूस हैं। BBC संवाददाता ज़ुबैर अहमद से उन्होंने खास बात की। ज़ुबैर अहमद ने उनसे सबसे पहले पूछा कि वो केजरीवाल की सरकार की 2.5 साल पुरानी सरकार के कामकाज को किस तरह से देखती हैं। तो उनका कहना था,
एज अ सिटीजन आई फील दिल्ली बहुत नीचे चला गया है, तो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है लोगों में। अब वो केजरीवाल जी पर है कि वो किस तरह से उसे ठीक करें।
वो कई बार ऐसा कह चुके हैं कि उनकी सरकार और बेहतर करती अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उनकी मुराद उससे है कि मोदी जी अगर उनको काम करने देते।
गवर्नर को हमें साथ अगर जो नहीं लेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, क्योंकि हर चीज़ गवर्नर का फाइनल सिग्नेचर होता है, उसी से आप लड़ लेंगे तो वो फाइनल सिग्नेचर ना करें। अच्छा, और ये दो प्रतिष्ठित जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके पास मैं गई थी और रडवानी जी के पास गई थी, तब जाके मेट्रो आई थी, वो तो हमारे नहीं थे, BJP के थे।
शीला दीक्षित थे, आप राहुल गांधी को बहुत ज़माने से जानते हैं, जब वो छोटे बच्चे थे तब से जानते हैं, आप तो इंदिरा गांधी के ज़माने से सियासत में हैं, उनको आपने किस तरह से अभी तक इवॉल्व होते हुए देखा है एज ए लीडर?
अच्छा इवॉल्व कर रहे हैं वो, थोड़ी बहुत कमियां कमजोरियां होती हैं, क्योंकि जब इंसान को वो नहीं होता है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज नहीं होती है, और बहुत सारा कुछ एडवाइजर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी को कह राइट ऑफ कर देना या राइट ऑन कर देना, मैं समझती हूँ ये गलत बात है। उनको मौका तो मिल दीजिए, अभी तो उनको मौका ही नहीं मिला है, प्रेसिडेंट भी नहीं बने हैं कांग्रेस के, बनने दीजिए ना।
एक शब्द जो है वो चिपक गया सबकी दौरान, वो है पप्पू। तो वो जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उससे उनकी छवि पे असर पड़ा आपको लगता है?
देखिए कुछ वक्त तक तो पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई कुछ कह दे, आप मुझे आप कह दीजिए उल्लू है, तो कुछ दिन तो उसका असर होगा ही, जब तक मैं साबित तक कर दूँ कि हाँ मैं उल्लू नहीं हूँ।
अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक मजबूत अपोजिशन पार्टी, जबकि इलेक्शन अपना नज़दीक है, उभर कर सामने नहीं आ सकी है।
मैं आपसे सच बात बोल, बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारा इसके बारे में चर्चा हुई है, कांग्रेस ने चर्चा में अपनी मीडिया को भी दिया है, लेकिन मोदी जी की सरकार का मीडिया पर हाथ है, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं होने देता है। तो जो हमारी बातें निकल कर आनी चाहिए, जिसमें आपको सबको पता चल जाए कि हाँ ये कांग्रेस से कहा है, वो होता है। हमारे में ये कमी नहीं है, ये सिस्टम में कमी बना दी गई है।
2019 आम चुनाव में क्या पार्टी आपकी वापस आएगी?
ये वापस आएगी कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इम्प्रूव करेगी। और मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि राहुल गांधी की लीडरशिप जो है वो उभर कर आएगी, उसका फायदा पार्टी को होगा।
कहीं ना कहीं तो कभी है ना पार्टी में, उसको पार्टी बोलती थी
एक्चुअली, कहीं ना कहीं कमी है, बट वी स्टिल फील वेरी प्राउड। हार जीत हम जानते हैं, इंदिरा गांधी भी हारी थी, ये तो डेमोक्रेसी में चलता रहता है। और 10 साल राज किया, उसके बाद हार गए, कोई बात नहीं, अगली दफा जीत,
चुनाव तो जीतने की नहीं लड़ रहे।
हाँ तो जीतेंगे, अब की बार जीतेंगे
2019 में,
हाँ
जीतेंगे।
हाँ आप मुझे बड़ा सस्पिशियसली पूछ रहे हैं, आपका ये सवाल जो है वो ज़रा वक्त से पहले है, वक्त आने दीजिएगा, देखिए।
तो ये थी शीला दीक्षित। भारत और भारत के बाहर भी कई देशों में दीपावली मनाई जा रही है आज, लेकिन हम बात करते हैं राजस्थान के बीकानेर की, जहां इस दीपावली पर भी उर्दू में रामायण का वाचन किया गया। इसमें रामायण के प्रमुख प्रसंगों को शेर व शायरी में चित्रण किया गया। 1935 में मौलवी बादशाह हुसैन राणा लखनवी ने जब पहली बार उर्दू जबान में इसे प्रस्तुत किया तो बड़ी तारीफ हुई। अब महफिल अदब और पर्यटन लेखक संघ हर साल इसका वाचन करते हैं, सुनिए नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
थोड़े दिन में जन के भी साजो सामा हो गए, खून से रंगीन सब को हो बियाबा हो गए, ये भी कुछ जख्मी हुए कुछ वो भी बेजा हो गए, कत्ले रावण के सब आसार अब नुमाया हो गए, देखने को जाई राह हनुमान जी की चल गई, देखने को जाई राह हनुमान जी की चल गई, वरना सीता की आए थी कि लंका जल गई, वरना सीता की आए थी कि लंका जल गई।
जब उर्दू में रामायण का पाठ हुआ तो कोई हाथ दुआ के लिए उठा तो कोई सिर आस्था में झुका हुआ था। जबान उर्दू थी लेकिन इसके केंद्र में मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मौलवी के हाथों लिखी इस छोटी सी रामायण में पैगाम बहुत बड़ा था। इस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक बीकानेर के डॉक्टर जियाउल हसन कादरी इस रामायण के बारे में बताते हैं।
इस रामायण को एक मौलवी ने लिखा है और 1935 में लिखा है। इस रामायण को 25 मिनट में पूरी पढ़ सकते हैं आप। राम का वनवास से लेकर जंगल में घूमना, जंगल की मुसीबतें उठाना, फिर लंका का रावण से युद्ध होना और लंका जीत के वापस अयोध्या आना, सिर्फ 25 मिनट में सारा वाक्य इसमें बयान कर दिया गया है साफ सुथरे जबान के अंदर। इसके शेरों की जो जबान है इतनी साफ सुथरी है, पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है उसको और अनपढ़ भी समझ सकता है। अभी तक जो रामायण लिखी गई जैसे रामचरितमानस अवधि में है, सबको अवधि नहीं आती है, ये सबको संस्कृत नहीं आती है, लेकिन इसकी जबान ऐसी है जो आम बोलचाल की जबान है, इसको आप शहरों में पढ़िए या कहीं गाँव में पढ़िए सब समझ सकते हैं।
इस आयोजन से जुड़े साहित्यकार असद अली असद इस रामायण की महत्ता बयान करते हैं।
तो आज इसकी प्रासंगिकता पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है उभर के सामने। आज जहाँ हर तरफ राम के नाम पर जो फिरकापरस्ती का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर बीकानेर में बैठकर किसी कोई रामायण लिखता है और बीकानेर में बैठकर कोई रामायण का वाचन करता है और वो रामायण जो किसी मौलवी ने लिखी है और उसको कोई मुसलमान पढ़ता है, तो एक बहुत अच्छा मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाता है। इसका जो है असर हमेशा से ही होता रहा है। जहाँ भी थोड़ी बहुत अगर कहीं खलिश नजर आती है तो इसको सुनने के बाद वो खलिश भी जाती रहेगी।
9 पृष्ठों की रामायण में राम का वनवास है तो रावण से युद्ध को भी चित्रित किया गया है। इसमें सीता को ऐसे किरदार के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें पवित्रता है और सच्चाई है।
सीता जी की जो हालत थी उसको देखिए राणा लखनवी साहब ने उर्दू रामायण किस तरह से बयान की है, ऐसी तस्वीर कहीं देखने को नहीं मिलेगी इसी रामायण में आपको सीता जी की। वो कहते हैं कि रंजो हसरत की घटा सीता के दिल पर छा गई, रंजो हसरत की घटा सीता के दिल पर छा गई, गोया जूही की कली ओस से मुरझा गई, गोया जूही की कली थी ओस से मुरझा गई। इन्हें कुछ जूही की कली की तरह नाजुक और पाकिजा बताया है जो गमों की ओस से मुरझा गई, ये उनके दुख दर्द को इस तरीके से बड़े शायराना अंदाज में इस रामायण में राणा लखनवी ने बयान किया है।
इस रामायण का पाठ होता है तो मजहब जात बिरादरी और जवान के फासले मिट जाते हैं, क्योंकि ना इसने कहा कि मेरा खुदा बड़ा है, ना उसने कहा मेरा ईश्वर तेरे खुदा से बड़ा है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर, राजस्थान।
और अब आपकी राय।
आपकी राय, आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ वंदना आपकी चिट्ठियों के साथ, और स्टूडियो में आज मैं लेकर आई हूँ,
मैं हूँ फैसल, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद फैसल चिट्ठियों के जवाब देने के लिए और पढ़ने के लिए। तो शुरू करें सिलसिला?
बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं गौतम दत्ता, जो उन्होंने किशनगंज से हमें चिट्ठी लिखी है, और उन्होंने देश के प्रदूषण पर जो है सवाल उठाया है, कहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मास्क लगाकर जाना पड़ता है, और अगर वर्तमान स्थिति यही रहेगी तो और मुश्किलें बढ़ सकती
जी हैं। बिल्कुल गौतम जी, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। भारत भर में इस पर बहस हो रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में अपनी एक फैसला भी दिया।
दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई,
खासकर मौसम में, और जब तक सर्दियां रहती है ये समस्या और बढ़ जाती है।
और डीजल जनरेटर पर रोक लगा दी गई है दिल्ली में कुछ दिनों
बिल्कुल
के लिए।
और हम भी लगातार इस पे अपनी रिपोर्ट्स भी सुनाते रहेंगे कार्यक्रम में।
वहीं जीशा नैयर साहब जो हैं ग्राम तरैया बेगूसराय से लिखते हैं कि गुरुदासपुर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के माने वो 2019 से जोड़कर देख रहे हैं आगामी चुनाव, और साथ साथ गुजरात और हिमाचल चुनाव पर भी कह रहे हैं, और उस पर कह रहे हैं कि उर्मिलेश जी का विश्लेषण जो था वो उन्हें बहुत सटीक लगा।
जी, पहले तो ये कि इन्होंने एक वाक्य लिखा है कि आप लोगों से शिकायत है कि मेरे गांव का नाम नहीं लेते, तो आज आपने गांव का नाम ले लिया है, तो उम्मीद है कि आज इनको शिकायत नहीं होगी,
शिकायत दूर हो जाएगी
जी। और बिल्कुल, और बाकी जो इन्होंने बात की, जो विश्लेषण इन्हें पसंद आया, तो उसके लिए धन्यवाद।
और वरना उसी के साथ साथ जसवंत सिंह बाड़मेर राजस्थान से लिखते हैं कि 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं वो, और बीबीसी हिंदी और उर्दू के सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, और रेहान फजल की विवेचना खासतौर पर उनको बहुत पसंद आती है, खासतौर पर कार्लोस द जयकाल पर जो रिपोर्ट थी रेहान साहब की।
बिल्कुल, हमारे युवा श्रोता हैं, 11वीं में पढ़ते हैं जसवंत सिंह जी, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुनते हैं, और उसके बाद आपने ईमेल भी लिखा। और रेहान फजल की विवेचना वाकई इस पे बहुत रिसर्च की गई थी, और बहुत वाकई अच्छी बन पड़ी थी विवेचना।
और रेहान साहब की विवेचना वैसे भी काफी लोगों को पसंद आती है, ज्यादातर लोगों को अच्छी रिपोर्टें होती हैं। इन्होंने साथ साथ जो है बीबीसी इंग्लिश लर्निंग कोर्स के बारे में भी पूछा है कि अगर कोई पुस्तक हो या कोई कार्यक्रम हो।
जी, ये बिल्कुल जो आपकी फरमाइश है ये हम राजेश जोशी जो रेडियो एडिटर है उन तक पहुंचाएंगे, और ज़रूर आपकी बात उन तक रखेंगे,
और कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई कार्यक्रम अगर नहीं है तो आगे बना पाएं या आपको इसका जवाब दे पाएं।
जी बिल्कुल।
और अगली चिट्ठी मैं पढ़ रहा हूँ वरना राहुल कुमार हैं, अब चूंकि गाँव के को लेकर लोगों ने शिकायत की है, तो गाँव गाजी चक के हैं, खजुरार पटना बिहार के, वो लिखते हैं विवेचना की तरह वसुतुल्ला सर की डायरी को भी डाउनलोड करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ताजमहल वाली डायरी तो कमाल की थी, इस प्रकार की उम्मीद सिर्फ बीबीसी से की जा सकती
है। चलिए, तारीफ की चिट्ठी आ गई एक। राहुल कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, वसुतुल्ला खान के बहुत सारे प्रशंसक हैं, लगातार चिट्ठी और ईमेल लिखते रहते हैं,
बड़े मजे लेकर लिखते हैं वसुतुल्ला,
और उनका अंदाज है बयां भी एकदम जुदा है,
तंज वाला अंदाज
जी। और डाउनलोड करने की व्यवस्था है, जो इसको भी जरूर आगे बात पहुंचाई जाएगी। बहुत सारे जो हमारे कार्यक्रम है उनको अभी पॉडकास्ट के जरिए सुना जा सकता है, इसमें जो नए कार्यक्रम है उनको भी जरूर कोशिश रहेगी कि आगे शामिल करें।
वैसे वो चाहे तो बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो फेसबुक पर, जो बीबीसी का फेसबुक पन्ना है, वहां से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं या
बिल्कुल
सुन सकते
अगर
हैं,
इंटरनेट की सुविधा है,
मौजूद है।
जी फैसल, आज वक्त इतना ही है, और अब जाते जाते एक बार पता बता देते हैं, जो लोग चिट्ठी लिखना चाहते हैं वो चिट्ठी लिख सकते हैं। पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और जो लोग ईमेल भेजना चाहते हैं तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब एक बार फिर प्रमुख समाचार। बीबीसी समाचार। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम शरीफ और दामाद मोहम्मद सफदर पर आरोप तय कर दिए हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना राजनीतिक सिद्धांत दिया है जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज होने में मदद करेगा। केन्या के विपक्षी नेता राइला ओडिंगा ने देश के चुनाव आयोग प्रमुख से कथित तौर पर अगले सप्ताह दोबारा होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को रद्द करने की मांग की है। स्पेन सरकार ने कहा है कि वह कैटालोनिया की स्वायत्त ताकतों को कम करने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू करेगी। बीबीसी समाचार। तो दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम नमस्कार भारत में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।